नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संघर्ष पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। यूरिया का घरेलू उत्पादन 315 लाख मीट्रिक टन पहुंचा। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, वर्ष 2014 से सिंदरी बरौनी सहित कई स्थानों पर नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए। रामनवमी का पर्व आज श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर शाम शोभा यात्राएं भी निकाली गयी। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट किया था। श्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। देश में पिछले एक दशक में यूरिया का घरेलू उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 2014 से सिंदरी बरौनी सहित विभिन्न स्थानों पर कई नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि खरीफ मौसम के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है।
जहाँ तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइजर का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल ही सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत की है, किसानों को सही समय पर खाद जितनी चाहिए वो मिलेगी।
सरकार ने कहा कि लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों, अनुसंधान और विकास पहलों के कारण सूक्ष्म भूमि और वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 82% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की कृषि भूमि का 48% हिस्सा सूक्ष्म भूमि है।
एक एक बूंद का हम ढंग से और सही उपयोग कैसे करें ताकि जो ड्राई लैंड वाले हमारे किसान हैं उनकी जो हमारी खेती है वो अच्छा उत्पादन दे सके, उस प्रश्न को कर सके। हमने सॉयल हेल्थ कार्ड बना के उसमें भी किन किन तत्वों की कमी है ड्राई लैंड में भी उसके हिसाब से जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतना ही केवल संतुलित उपयोग खाद का करें।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग 30% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 2000 के अंतर्गत सभी पंजीकृत चिकित्सकों का रोगियों को जेनेरिक दवाएं लिखना और तर्कसंगत सलाह देने की प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।
हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का 2002 का रेगुलेशन है उसके क्लॉज 1.5 के तहत हमने ये नियम बनाया है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो जेनेरिक दवाओं को ही प्रेस्क्राइब करेंगे और नेशनल प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान देंगे। इस संबंध में हमारे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें DGHS की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि संविधान के तहत कोई भी निर्वाचित सदस्य 14 दिनों के भीतर एक पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य होता है। अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी 30 मार्च तक इस्तीफा देना पड़ेगा।
संविधान के तहत व्यवस्था बनी हुई है, कोई माननीय सदस्य निर्वाचन के 14 दिनों के अंदर रिजाइन करना होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हो गए हैं राज्यसभा के लिए जाकर, और माननीय वर्तमान में जो विधायक हमारे तो आगे मतलब जाकर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नितिन नवीन जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जाकर के हैं, उनको भी 14 दिनों 30 मार्च तक रिजाइन करना होगा, अन्यथा पदोन्नत माना जाता है। करके समय भी है और समय के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि रिजाइन काउंसिल को आ जाएगा और मुझे विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरे पास भी माननीय नितिन नवीन जी का प्राप्त हो जाएगा।
इधर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राज्यसभा के लिए चयनित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 मार्च तक पद छोड़ने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभागीय कामों के सुचारू संचालन के लिए सेवानिवृत्त अंचलाधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
आम जनता के कार्यों में बाधा न आए इसे सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में सेवानिवृत्त हुए अंचलाधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजित किया जाएगा। जो अंचलाधिकारी अभी भी हड़ताल पर हैं और जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान नहीं दिया उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया है और इसके लिए वैकल्पिक नियुक्तियों सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने लॉकडाउन या ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसी सनसनीखेज खबरों पर विश्वास नहीं करने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने का आग्रह किया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और जुर्माने तथा दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने जैसे उपाय किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70% करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20% आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पाइपलाइन गैस विकल्प नहीं है। श्री पुरी ने कहा कि जहां दुनिया के अन्य देश 4 दिन के कार्य सप्ताह, स्कूल और कार्यालय बंद करने और ईंधन की कीमतों में 20-30% की वृद्धि जैसे कई कड़े ईंधन संरक्षण उपाय कर रहे हैं, वहीं भारत ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और सामर्थ्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है। केंद्र सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रूपये प्रति लीटर की कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवेदन में 28 प्रश्न पूछे जाएंगे। नए नियम के अनुसार आय में वेतन के साथ कृषि और व्यवसाय की कमाई भी शामिल होगी। वहीं 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि या तय सीमा से ज्यादा संपत्ति वालों को लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी और आश्रित बच्चों की संयुक्त आय के आधार पर पात्रता तय होगी। गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र बनवाने पर कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के कुटहन गांव में एक युवक ने अपने ही परिवार के 3 बच्चों की गर्दन रेतकर हत्या कर दी। बाद में आरोपित ने गर्दन रेतकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दाऊदनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार दास ने बताया कि अमनपाल नामक युवक ने अपने बड़े भाई के 3 बच्चों की गर्दन रेतकर हत्या कर दी है। जब बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एक विक्षोभ बिहार से लेकर मणिपुर तक फैली हुई है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों के बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 37 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा।
दिनांक 28 मार्च 2026 को राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा ओलावृष्टि के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
रामनवमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रात्रि 2 बजे से पट खोल दिए गए थे। वहीं इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शोभा यात्राएं भी निकाली गई। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों के कलाकार भी शामिल हुए। इधर रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। निगरानी जांच ब्यूरो ने मधुबनी जिले के खदौली प्रखंड की शिक्षिका वीना कुमारी का सीपीईडी अंक पत्र जांच के दौरान फर्जी पाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में वीणा को प्रखंड शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था। सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव के पास सरयू नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अररिया जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फारबिसगंज अंचल के खान निरीक्षक ने 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। जब्त तीनों ट्रैक्टरों पर 3.25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। रोहतास जिले में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 10 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के 53 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बताया कि बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा बल ने गश्ती के दौरान 4 किलोग्राम चरस के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं कटिहार जिले में बलरामपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 285 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संघर्ष पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। यूरिया का घरेलू उत्पादन 315 लाख मीट्रिक टन पहुंचा। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा वर्ष 2014 से सिंदरी बरौनी सहित कई स्थानों पर नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए। रामनवमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर शाम शोभा यात्राएं भी निकाली गई। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।